मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे।
सालों पहले लोक संचार परिषद के लिए पीयूष पांडे के लिखे इस गीत ने उन्हें भारत के ब्रांड निर्माताओं की पहली कतार में ला खड़ा किया था। इसके बाद तो उनकी तरफ से विश्व स्तर के एड कैंपेन्स की झड़ी सी लग गई, लूना, कैडबरीज, फेविकोल, सेंटर फ्रेश और न जाने क्या क्या। भारतीय जनमानस से संवाद स्थापित करने का पहला पाठ पीयूष ने अपने पिता से सीखा था। जयपुर की बर्फीली सुबहों में लिहाफ में गुड़मुड़ियाए 5 साल के पीयूष को उनके पिता अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाते हुए जगाया करते थे। चिड़िया चूचू करके बोली, भोर निकलकर आई क्या, बिटिया पड़ी बिछौना पूछे, अम्मा चाय पकाई क्या।
बचपन से ही सब लोग घर में हिंदी बोलते थे, मेरी बहनें भी हिंदी बोलती थीं, मेरे माता पिता को बहुत शौक था, दोनों बहुत साहित्य पढ़ते थे हिंदी का। सोचने का एक तरीका और हंसने का तरीका और रोने का तरीका सभी हिंदी में था।
दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े पीयूष पांडे से मैंने पूछा कि आम तौर से माँ बाप अपने बच्चों को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर, आप विज्ञापनों की दुनिया में किस तरह आ गए?
देखिए, इंजीनियर और डॉक्टर तो मेरे माँ बाप ने बनाने की काफी कोशिश की थी स्कूल में, मगर अगर मैं डॉक्टर बनता तो शायद रोगियों को बड़ी परेशानी होती और इंजीनियर बनता तो कई घर टूटते। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे सिर्फ आर्ट्स में एडमिशन दिया और वहाँ से मेरी जिंदगी थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि साइंस मैथ्स मेरे बस का रोग नहीं था और क्रिकेट के जरिए मेरे को एडमिशन मिला और उन्होंने सिर्फ मेरे को आर्ट्स दिया और मेरे को एकाएक लगा कि शायद यही मेरी कॉलिंग है। और पहले साल ही में मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, उसके बाद मैं स्कॉलरशिप्स पे पढ़ा। पहली नौकरी मेरी एडवर्टाइजिंग नहीं थी, पहली नौकरी अरुण लाल और मैंने साथ में डिसाइड किया था कॉलेज में कि जहाँ भी नौकरी करेंगे साथ में करेंगे, कहाँ करेंगे क्योंकि कुछ नहीं मालूम था। अरुण मेरे से 1 साल सीनियर हैं तो वो टी कंपनी में टी टेस्टर बन के चले गए थे। जब मैंने एमए फिनिश किया तो उन्होंने मेरा बायोडाटा मंगाया और कंपनी ने मुझे भी नौकरी दे दी, तो मैंने 3 साल टी टेस्टिंग की। और फिर एक दिन अरुण और उनकी पत्नी रीना ने कहा कि हमारे कॉमन फ्रेंड थे जो एडवर्टाइजिंग में थे, तो उनका काम हम देखते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम जो चीजें बोलते हो दिन भर वो तो इन चीजों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं करते हो। तो तब मैं बंबई आया और काफी भागदौड़ करने के बाद में ओगिलवी ने मुझे नौकरी दी और आज भी मैं वहीं हूँ 33 साल बाद।
वैसे सब की नींव बहुत पहले जयपुर में रखी गई थी जब पीयूष की बड़ी बहन और आज भारत की मशहूर गायिका इला अरुण विविध भारती के लिए जिंगल्स बनाती थी और उसमें आवाज देने के लिए पीयूष को 50 रुपए मिला करते थे।
नया नया जब विविध भारती आया था तो उन्होंने कमर्शियल शुरू किए और जयपुर जैसी जगह में कमर्शियल यानी लोगों से पैसा निकलाना या ये कहना कि विज्ञापन जो है अपनी चीजों को बेचने के लिए अनिवार्य है, हेल्प करता है, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट था। अब सारा कुछ जो था 7 सेकंड के 200 रुपए मिलते थे और 10 सेकंड के कोई 250 या 300, तो एक एक्यूमुलेट होकर कुछ चीजें आती थी और उसमें भी प्रोडक्ट से ज्यादा उनका एड्रेस, जैसे कि माया अगरबत्ती तो एड्रेस इतना बड़ा था, लालजी सान का रास्ता, जौहरी का बाजार, सौतलियों का रास्ता तो वो मजेदार चीज। तो आवाज हमारे घर में अच्छी थी पीयूष की और प्रसून हमारे दूसरे ब्रदर, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया और घर में ही हम लोगों ने एक स्टूडियो बना रखा था। और मेरी उस पब्लिसिटी का सबसे बड़ा योगदान पीयूष का, उन्होंने 5-6 तभी सोचा भी नहीं था कि उनकी लाइन होगी, एक था मेरी पसंद का एक साबुन झागो झागो और उसमें पीयूष करते थे झागो झागो कपड़े इससे अच्छे धुलते झागो साबुन झागो झागो एंड देवर यू नो स्मॉल इन सेंट जेवियर्स, तो उनको फिर कुछ पैसा मिल जाता था तो हमेशा पूछते थे कि भाई अब कौन सा आया, या मेरे घर के दरवाजे पे लटकता जैक्सन ताला तो वो भी उसमें उनकी वॉइस आती थी।
पीयूष को शुरू से ही वन लाइनर्स और पंच लाइन देने में महारत हासिल थी। नामी क्रिकेटर और उनके जिगरी दोस्त अरुण लाल याद करते हैं।
शुरुआत में उनको उनमें कोई एडवर्टाइजिंग की ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनके मन में ये थी बात कि मैं मार्केटिंग में नाम कमाना चाहता हूँ एक, या फिर एडवर्टाइजिंग में जाना चाहता हूँ। उनके लिए तो खैर एडवर्टाइजिंग तो एक एक्सीडेंट था, और कहाँ तक पहुंचे कमाल ही कर दी उन्होंने। पर इनमें मैं ये पहले भी कहूंगा कि इनमें ये गुण था, ये राइम बहुत अच्छा करते थे, इनका मन ही ऐसे चलता था कि जो जिस तरह इनका मन सोचता है औरों का सोचता ही नहीं है। और कई बार इतने ह्यूमरस, इतने वन लाइनर्स निकलते थे इनके, तो मैं उस टाइम भी कहता था जब हम चाय की कंपनी में काम करते थे इकट्ठे कि यार तुमको एडवर्टाइजिंग में होना चाहिए, यहाँ पे चाय की कंपनी में तुम वेस्टेड हो। किसी को भी कोई स्लोगन चाहिए होता था तो पीयूष के पास जाते थे, और हिंदी का इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, हिंदी में सोचते हैं, और जिस तरह का नजरिया है ना कि डे टू डे लाइफ को ये बहुत करीब से समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं।
विज्ञापनों के अलावा पीयूष का एक और पैशन था क्रिकेट। वो राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम के सदस्य थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके साथी होते थे अमृत माथुर, कीर्ति आजाद और अरुण लाल। एक बार हिंदू कॉलेज के साथ मैच में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 53 रन पर 6 विकेट गिर गए थे। तब पीयूष पांडे ने 71 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जिताया था। अरुण लाल को उनकी वो पारी अभी तक याद है।
हमारे लिए तो वो टेस्ट मैच से भी बढ़कर था, हिंदू और स्टीफन का फाइनल, पूरा वहाँ पे यूनिवर्सिटी मौजूद रहता था और बढ़िया, वहाँ पे तकरीबन 15,000 की तादाद में लोग आते थे और चीयरिंग बहुत लाउड होती थी। तो वो मैच कांटे का मैच होता था, स्टीफन की टक्कर थी हिंदू से, और हमारे से पहले मतलब हिंदू की टीम पेपर पे तो ऑलवेज हमसे स्ट्रांग थी, तकरीबन 5 करंट रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स थे उसमें, और हमारी टीम कुछ ऐसी जानी मानी थी नहीं, पर हमारे पास 2-3 अच्छे खिलाड़ी थे, उनके बल पे हम आगे भी बढ़ते थे और जीतते भी थे। और वो मैच मुझे याद है कि हम 53 पे 6 खिलाड़ी आउट हुए थे, मैं आ गया था बाहर, 44 रन किए थे मैंने, और मेरे को लगा कि अब खत्म हो गया मैच, और पीयूष अंदर जा रहा था, तो मैंने कहा उसे सिर्फ ऐसे ही मुझे याद है कुछ कहा कि संभाल लेना, उसे जाके क्या बढ़िया पारी खेली 71 रन की, और वो मैच भी हम अंत में जीत पाए, तो वो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से याद।
चल मेरी लूना के विज्ञापन से पीयूष ने पहली बार अपनी पहचान बनाई। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी एक कृति पहली बार अपने पड़ोसी के टेलीविजन पर देखी, और वो भी उनकी खिड़की के शीशे से।
वो किस्सा यह है कि मैंने अपना जो पहला छोटा सा एक अपार्टमेंट लिया था मुंबई में, तो उसके लिए थोड़ा बहुत लोन HDFC ने मुझे दिया था मेरी औकात के हिसाब से, और बाकी पैसे मैंने अपने दोस्तों से, अपने परिवार से लिए थे। तो मैंने एक सोच बनाई थी कि जब तक सबके पैसे नहीं लौटा दूंगा, HDFC को तो खैर 10 साल का मोहलत थी मेरे पास, मगर बाकियों के पैसे जब तक नहीं लौटाऊंगा मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। तो मैं TV नहीं ले पाया था, और मुझे बड़ा शौक था कि मेरा ऐड जब पहली बार TV पे आए उसी दिन पब्लिक के पास पहुंचता है, तो मैं देखना चाहता था। तो मैं अपने पड़ोसी को रिक्वेस्ट किया, हम सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, कि मैं आपकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर एक बार देख लूं, मुझे सांत्वना हो जाए कि मेरा ऐड आ गया है। तो वो बोले नहीं, अंदर आके चाय पीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं खिड़की से देख लूंगा। तो देखा, और वो प्रूफ ऑफ द पुडिंग उसी दिन होती है जब आपका एड लोगों तक पहुंचता है।
उनका कैडबरीज का कुछ खास है वाला विज्ञापन याद करिए, जब एक क्रिकेटर छक्का लगाता है और उसकी माशूका सारे सुरक्षा कर्मियों को छकाते हुए बीच मैदान में जाकर डांस करने लगती है। मैंने पीयूष से पूछा कि कहीं आप अब्बास अली बेग से तो इंस्पायर नहीं हुए थे, जिनके साथ भी कुछ इससे मिलता जुलता वाकया हुआ था।
इंस्पायर नहीं था, आई थिंक इंस्पिरेशन कई थे। पहली बार तो आइडिया किसी भी चीजों से इंस्पायर नहीं था, आइडिया था कि मैं लोगों को बताऊं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जिसे हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उसको छुपाने लगते हैं, मगर उस बच्चे की जो खूबसूरती है वही जिंदगी की खूबसूरती है। तो सारी कैंपेन ही थी कि एक ना एक दिन आपको लगता है कि अरे मैं क्यों नहीं बरसात में नाच सकता हूँ। सारे टाइम हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है आपके बारे में कहने की। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करिए। आपको लगता है कि अब्बास अली बेग, ब्रजेश पटेल के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, पर इनसे मैं इंस्पायर नहीं हुआ था। मैं इंस्पायर हुआ था एक अंग्रेजी पिक्चर में, एक वो भी मैंने बाद में ही देखा था, कि जहाँ एक बाप अपने बच्चे को बेसबॉल में, बच्चा बड़ा वीक था बेसबॉल प्लेयर, जो ऊंचा कैच आता है और वो पकड़ लेता कैसे न कैसे, तो वो बाप खुशी से पागल हो जाता है और बच्चों की तरह उसको सेलिब्रेट करता है।
कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है।
ही स्वाद जिंदगी का।
पीयूष के फेविकोल के बस वाले विज्ञापन को पूरी दुनिया में जितनी तारीफ मिली उतनी कम विज्ञापनों को मिली है, और फिर उनके फेविकोल के दम लगा के हिंसा का भी कोई जवाब नहीं।
फेविकोल की बैकग्राउंड मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्रेडिट उसके लिए क्लाइंट्स को जाती है। मुझे जब मौका दिया गया था फेविकोल पे काम करने का, तब ये भी नसीहत दी गई थी कि ये क्लाइंट कोई ज्यादा क्रिएटिव काम नहीं खरीदते, तो मैं बड़ा डरा हुआ गया था और दम लगा के हिशा लेके गया था, और वो क्लाइंट तो इतने समझदार निकले कि वो बोले नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, तुम छोटी ब्रांड के लिए क्यों बना रहे हो, तुम फेविकॉल के लिए बनाओ। मैंने फेवी टाइट के लिए लिखा था। वो फिर बोले वो लोग कि तुम सिर्फ रेडियो पे क्यों कर रहे हो, जाओ इसकी फिल्म बनाओ। और वहां से जो शुरुआत हुई वो जो जर्नी है वो अभी भी जारी है।
दम लगाकर जोर लगाकर
मानते ही नहीं, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। फर्नीचर का साथी जिसकी निशानी है हाथी, फेविकॉल, फेविकॉल ऐसे जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा न तोड़ पाए।
एक और विज्ञापन जिससे पीयूष को बहुत तारीफ मिली वो था SBI लाइफ, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी को एक हीरा उपहार में देता है। ये प्रसंग भी पीयूष के अपने खुद के जीवन से जुड़ा हुआ है।
इसी को तुम अखबार में छुप छुप कर देख रही थी ना?
हाँ, क्यों?
देखो मैं ले आया।
पागल तो नहीं हो गए? कितने के हैं?
अरे कुछ भी नहीं।
नहीं नहीं लौटा।
ए अब बहुत शुभ दिन है, वो वैलेंटाइंस डे। इस दिन जो लोग प्यार करते हैं ना, एक दूसरे को कुछ न कुछ देते।
इस उम्र में कहाँ पहनूंगी हीरा।
अरे हीरे को क्या पता तुम्हारी उम्र।
SBI लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ लॉन्ग पेंशन।
मुझे याद है कि एक बार मेरी, उस वक्त तक हम दोनों भाई अपनी अपनी नौकरियों में अच्छा करने लगे थे, थोड़े बहुत पैसे भी हाथ में आ गए थे, तो मेरी बहनों ने कहा तुमको मालूम है तुम्हारी माँ को हीरे का बहुत शौक है, मगर वो उनकी आदत नहीं है कि कभी किसी से कुछ मांगे। तो हमने कहा कि चलो उनका शौक है तो हम लेके आते हैं। तो इतने पैसे नहीं थे कि एक आदमी इयर रिंग्स खरीद पाए दोनों दोनों ने मिलके एक एक खरीदा और उनके पास ले गए, तो वो रोने लगी क्योंकि ये तमन्ना उनकी पूरी हुई नहीं थी कभी। तो वो बोली उस टाइम पे बड़ी मॉडेस्टली कि इस उम्र में मैं क्या करूंगी हीरा। ये कहानी मुझे याद थी और मैंने सिर्फ एक ही लाइन उसमें ऐड करी कि हीरे को क्या पता तुम्हारी उम्र क्या है।
नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने का थोड़ा बहुत श्रेय पीयूष पांडे को भी दिया जा सकता है। उन्होंने ही अब की बार मोदी सरकार का नारा गढ़ा और अच्छे दिन आने वाले हैं की कैंपेन चलाई।
उन लोगों में बहुत क्लैरिटी थी, जो टीम हमको ब्रीफ कर रही थी उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिसर्च है जो कहती है कि मोदी जी की जो इमेज है वो BJP की इमेज से भी ऊपर है। तो ये डिसीजन उन्हीं का था कि वो मोदी सरकार से लीड करेंगे, BJP सरकार से लीड नहीं करेंगे। तो उसके बाद में तो काम आसान हो गया था मेरे लिए टू राइट अप की वह मोदी सरकार। पर आई थिंक लाइनें फेमस होती हैं कॉन्टेक्स्ट से, एंड मुझे जिस बात का गर्व है कि हमने उसके कॉन्टेक्स्ट जो दिया उसके साथ में जो लाइनें लगाई कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। विश्व में बड़ी फेमस लाइन है जस्ट डू इट नाइकी शूज के लिए, और अगर आप लाइन को आइसोलेशन में देखेंगे तो कोई इतनी बड़ी लाइन नहीं लगती है, मगर जो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में उसे प्रस्तुत किया उससे आज वो लाइन लेजेंडरी हो गई है।
एक काम रहेगा कोई ना कच्चा, देश बनेगा सबसे अच्छा, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
लेकिन पीयूष की जिस कृति पर उनकी माँ को सबसे ज्यादा नाज था वो था कालजयी मिले सुर मेरा तुम्हारा। उनका कहना था कि काश तुम्हारे पिता इस काम को देखने के लिए जीवित होते।
क्योंकि सभी लोगों के आस पड़ोसी रिश्तेदार जयपुर में रहने वाले लोग हर आदमी फोन कर रहे थे उनको और बता रहे थे कि, और उनको खुद को भी लग रहा था कि ये बहुत देश के लिए बहुत ही अच्छा काम है। तो उनकी ये तमन्ना थी कि जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की थी ना मेरी माँ को ना मेरे पिताजी को मालूम था कि एडवर्टाइजिंग में भी नौकरी होती है कोई। तो 85 में मेरे फादर गुजर गए थे और 87 में मैंने ये लिखा था। तो उनकी हमेशा वो रोती थी कि काश तुम्हारे फादर होते तो आज कैसे अपने दोस्तों में बता रहे होते कि देखो ये करता मेरा बेटा।
बादलों का रूप लेकर बरसे
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।